नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। सरकार ने अग्रिम प्राधिकार योजना के अंतर्गत शुल्क मुक्त सोने के आयात की सीमा 100 किलोग्राम तय की। प्रदेश में मकानों के सूचीकरण और आवास जनगणना का कार्य तेजी से जारी। अभी तक 70% कार्य पूरा, 19 लाख घरों तक पहुंची टीम। पेट्रोल डीजल की बचत और ऊर्जा संरक्षण को लेकर राज्य के सरकारी विभाग सक्रिय। मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण ने भी शुरू की तेल बचाओ मुहिम, साझा वाहन और ऊर्जा संरक्षण पर जोर। और चमोली जिले में रुद्रनाथ यात्रा का शुभारंभ। शीतकालीन गद्दी स्थल गोपीनाथ मंदिर में चल विग्रह उत्सव डोली को श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ रखा गया। 18 मई को खुलेंगे रुद्रनाथ मंदिर के कपाट। प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं जयवीर सिंह। और अब समाचार विस्तार से। कीमती धातुओं पर आयात शुल्क बढ़ाने के बाद केंद्र सरकार ने अब अग्रिम प्राधिकार योजना के अंतर्गत सोने के आयात पर 100 किलोग्राम की सीमा तय कर दी है। पहले इस योजना के तहत सोने के आयात की कोई सीमा तय नहीं थी। एक रिपोर्ट।
ये योजना आभूषण निर्यातकों को शून्य शुल्क पर कच्चे माल का आयात करने की अनुमति देती है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक सार्वजनिक सूचना में कहा है कि इस योजना के अंतर्गत निर्यातक एक बार में अधिकतम 100 किलोग्राम सोना ही बिना किसी शुल्क के मंगा सकते हैं। महानिदेशालय ने पहली बार आवेदन करने वालों के लिए विनिर्माण संयंत्रों का भौतिक निरीक्षण अनिवार्य कर दिया है, ताकि उसकी परिचालन स्थिति और क्षमता का पता लगाया जा सके। इसमें यह भी कहा गया है कि दोबारा बिना शुल्क सोने के आयात के लिए कंपनी को अपने पिछले टारगेट का कम से कम 50% निर्यात पूरा करना होगा।
प्रदेश में मकानों के सूचीकरण और आवास जनगणना का कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है। अभी तक यह कार्य 70% तक पूरा हो गया है। इस कार्य के लिए 24 मई तक समय सीमा निर्धारित की गई है। जनगणना कार्य में लगी टीमों ने अभी तक 19 लाख घरों में डेटा संग्रहित किया है। इस लिहाज से 46 लाख की आबादी को कवर किया गया है। एक रिपोर्ट।
भारत के महारजिस्ट्रार व जनगणना आयुक्त मृत्युंजय कुमार नारायण ने देहरादून में प्रमुख सचिव आरके सुधांशु के साथ प्रदेश में जनगणना कार्य की समीक्षा की। उन्होंने वर्चुअल बैठक कर जिलाधिकारियों और नगर आयुक्तों से फीडबैक लिया। श्री नारायण ने कहा कि जनगणना के कार्य में आंकड़ों की गुणवत्ता की सबसे ज्यादा अहमियत है, क्योंकि इसी पर परिसीमन से लेकर जनकल्याणकारी योजनाओं का आधार टिका हुआ है। उन्होंने सभी से आंकड़ों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए डेटा की जांच पर विशेष ध्यान दिए जाने की अपील की। साथ उम्मीद जताई कि उत्तराखंड में जनगणना कार्य में शेष बचे एक तिहाई कार्य को भी समयबद्ध ढंग से पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि पहले चरण में किया गया अच्छा काम ही दूसरे चरण की सफलता का मजबूत आधार साबित होगा। बैठक में प्रमुख सचिव आरके सुधांशु ने कहा कि जनगणना का कार्य राष्ट्रीय अभियान है, जिसका देश की प्रगति और विकास से गहरा नाता है। उन्होंने कहा कि इस कार्य को प्राथमिकता देते हुए पूरा करना है। आकाशवाणी देहरादून के लिए समाचार कक्ष से आशा भट्ट।
पिथौरागढ़ जिले में स्वास्थ्य सुविधाओं को और अधिक सुदृढ़ बनाने की दिशा में नैनीताल बैंक की ओर से कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी गतिविधियों के तहत स्वास्थ्य विभाग को एक आधुनिक एम्बुलेंस प्रदान की गई है। इस अवसर पर राजकीय नर्सिंग संस्थान पिथौरागढ़ में आयोजित कार्यक्रम में जिलाधिकारी आशीष कुमार भटकाई ने कहा कि जिले के दूरस्थ और पर्वतीय क्षेत्रों तक समय पर स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाना प्रशासन की प्राथमिकता है। उन्होंने इस जनहितकारी पहल के लिए बैंक का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि निजी स्थानों द्वारा जनहित में किए जा रहे कार्य प्रेरणादायी और सराहनीय हैं। जिलाधिकारी ने कहा कि सरकारी संस्थाओं और निजी संगठनों के सहयोग से स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है। विशेष रूप से सीमांत और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को इस प्रकार की सुविधाओं का सीधा लाभ मिलेगा।
एक बहुत अच्छी पहल नैनीताल बैंक के द्वारा यहाँ पर की गई है। ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और मैं चाहूंगा कि आने वाले समय में भी इस तरह की गतिविधियां आप पूरे संपूर्ण जनपद में अन्य जगह भी, क्योंकि एम्बुलेंस की आवश्यकता निरंतर बनी रहती है। और मैं सीएमओ साहब से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि इसका सदुपयोग करना भी सुनिश्चित करें, क्योंकि कई बार देखा जाता है कि एम्बुलेंस तो आ जाती है लेकिन फिर उसका रिकरिंग कॉस्ट होती है और उसका जो पूरा मेंटेनेंस होता है उसका भी पूरी प्लानिंग आपके पास होनी चाहिए और ड्राइवर की भी उपलब्धता सुनिश्चित होनी चाहिए और सही जगह पर डिप्लॉयमेंट भी होना चाहिए।
ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं।
ब्रेक के बाद आपका पुनः स्वागत। आप उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार सुन रहे हैं। पेट्रोल डीजल की बचत और ऊर्जा संरक्षण को लेकर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के आह्वान के बाद प्रदेश में सरकारी विभाग सक्रिय होते दिखाई दे रहे हैं। इसी क्रम में मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण MDDA ने भी तत्काल प्रभाव से ऊर्जा संरक्षण और तेल बचत को लेकर कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। MDDA उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने प्राधिकरण के अधिकारियों और कर्मचारियों की तेल बचत और ऊर्जा संरक्षण पर विशेष कार्य योजना लागू की है। उन्होंने बताया कि अधिकारियों कर्मचारियों से कार्यालय आने जाने के दौरान साझा वाहन अपनाने का रोस्टर जारी किया गया है ताकि अनावश्यक ईंधन खपत को कम किया जा सके। इसके अलावा कार्यालय के आसपास रहने वाले कर्मचारियों को साइकिल से या पैदल कार्यालय आने की सलाह दी गई है। MDDA उपाध्यक्ष ने कहा कि इससे न केवल ईंधन की बचत होगी बल्कि कार्बन उत्सर्जन में भी कमी आएगी। उन्होंने कहा कि ऊर्जा संरक्षण को लेकर भी कई महत्वपूर्ण आंतरिक दिशा निर्देश लागू किए गए हैं जिनका उद्देश्य बिजली और ईंधन दोनों की बचत करना है।
हम लोगों ने रोस्टर बनाया है कि सभी JEE जो भी सेक्टर में निर्माण में सीलिंग में लगे हैं, एक सेक्टर के लिए एक गाड़ी आवंटित कर दी है। सीलिंग में जाएंगे तो एक साथ एक ही गाड़ी में बैठकर लोग कार पूल करेंगे और सीलिंग की कार्रवाई और डस्टिंग की कार्रवाई करेंगे। साथ ही साथ हम लोगों ने जो AC है वो 25 डिग्री पर मेंटेन किया है और जहाँ जरूरत नहीं है उसको बंद कर दिया।
चमोली जिले में स्थित रुद्रनाथ मंदिर के कपाट 18 मई को श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। इस बीच भगवान रुद्रनाथ की यात्रा का आज शीतकालीन गतिस्थल गोपीनाथ मंदिर में पूजा अर्चना के बाद शुभारंभ हो गया है। रुद्रनाथ के मुख्य पुजारी हरीश भट्ट ने बताया कि सुबह पूजा अर्चना के बाद गोपीनाथ मंदिर में गर्भगृह से भगवान रुद्रनाथ की चल विग्रह उत्सव डोली को श्रद्धालुओं के दर्शनों के लिए मंदिर परिसर में रखा गया। उन्होंने बताया कि आज और कल उत्सव डोली के दर्शनों के लिए मंदिर परिसर में ही रहेगी। 17 मई को डोली रुद्रनाथ के लिए प्रस्थान करेगी और 18 मई को रुद्रनाथ मंदिर के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे।
आज भगवान रुद्रनाथ जी की जो विग्रह मूर्ति है वो गर्भगृह से आकर मंदिर प्रांगण में रख दी गई है और आज और कल दो दिन दर्शनार्थ के लिए रखी जाएगी। 17 तारीख को हम यहाँ से प्रातः 9 बजे प्रस्थान करके यहाँ से चलेंगे और 18 तारीख 11-12 बजे के बीच में भगवान रुद्रनाथ जी के कपाट खुलेंगे।
पौड़ी की जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया के निर्देशों के क्रम में कोटद्वार में उप जिलाधिकारी ने आज शशिधर भट्ट स्पोर्ट्स स्टेडियम का स्थलीय निरीक्षण कर निर्माण कार्यों, साफ सफाई व्यवस्था और खिलाड़ियों को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं का जायजा लिया। इस दौरान परिसर स्वच्छ और व्यवस्थित पाया गया तथा शौचालयों की स्थिति भी संतोषजनक मिली। साथ ही निर्माण कार्य भी तेजी से संचालित किए जा रहे हैं। अधिकारियों ने बताया कि स्टेडियम में चल रहे सभी निर्माण कार्य और मरम्मत कार्यों को इस माह के अंत तक पूरा कर लिया जाएगा। उप जिलाधिकारी ने निर्माण कार्यों को गुणवत्ता के साथ समयबद्ध ढंग से पूरा करने के निर्देश दिए। हरिद्वार में आगामी कुंभ मेले को सुव्यवस्थित, सुरक्षित और श्रद्धालुओं के लिए सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से मेला प्रशासन तैयारियों में जुटा हुआ है। इसी क्रम में मेलाधिकारी सोनिका ने विभिन्न क्षेत्रों में चल रहे सड़क और पुल निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कार्यों की प्रगति का जायजा लेने के साथ ही सड़क निर्माण कार्यों की मौके पर गुणवत्ता और तकनीकी मानकों की भी जांच कराई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने अग्रिम प्राधिकार योजना के अंतर्गत शुल्क मुक्त सोने के आयात की सीमा 100 किलोग्राम तय की। प्रदेश में मकानों के सूचीकरण और आवास जनगणना का कार्य तेजी से जारी। अभी तक 70% कार्य पूरा, 19 लाख घरों तक पहुंची टीम। पेट्रोल डीजल की कीमत माफ कीजिए बचत और ऊर्जा संरक्षण को लेकर राज्य के सरकारी विभाग सक्रिय। मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण ने भी शुरू की तेल बचाओ मुहिम, साझा वाहन और ऊर्जा संरक्षण पर जोर। और चमोली जिले में रुद्रनाथ यात्रा का शुभारंभ, शीतकालीन गद्दी स्थल गोपीनाथ मंदिर में चल विग्रह उत्सव डोली को श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ रखा गया। 18 मई को खुलेंगे रुद्रनाथ मंदिर के कपाट। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।